Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being a Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any mutual fund related queries that you may have. You can call us with your queries on 2331-4444, 2342-1050. And 2331-0464. Listeners who are calling us from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Subodh Mishra.
Namaskar Shrotao, Karobari Khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj Ravivar hai aur har Ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke sawalon ke jawab denge. Sawal poochne ke liye aap in numbaron par phone kar sakte hain. 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
पहले हेडलाइंस के साथ अनुभव।
Government to invest 10 lakh crore rupees in highway development projects over the next 2 years, says Union Minister Nitin Gadkari. Domestic markets to focus on tariff announcements and quarterly earnings for Qs next week. And global gold prices surged over 6% last week to another record high at $3,245 an ounce.
अगले दो सालों में राजमार्गों के विकास पर सरकार 10 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी, कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। अगले हफ्ते देश के बाजारों का फोकस रहेगा आयात शुल्क से जुड़ी घोषणाओं और कंपनियों की तिमाही आमदनी के आंकड़ों पर। और बीते हफ्ते में दुनिया के बाजारों में सोने की कीमतें 6% से ज्यादा बढ़कर $3,245 प्रति औंस पर पहुंची।
The government is planning to invest 10 lakh crore rupees over the next 2 years to strengthen highways across the country, with special focus on the northeast and border areas. In an interview to a news agency, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said, the centre is working to transform the country's infrastructure drastically in the next 2 years so that it matches the best in the world. He asserted, the government is planning to take up projects to enhance infrastructure in the northeast, where roads will rival those in the United States. The minister said there is an urgent need to augment the road infrastructure in the northeast, given its difficult terrain and proximity to borders with several countries. He said 784 highway projects will be implemented in the eastern states at an estimated cost of over 3,70,000 crore rupees, covering more than 21,300 kilometers. Among them are projects of the Road Transport and Highway Ministry, the National Highways Authority of India, and the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. Mr. Gadkari asserted that in the northeast, the government is working on projects worth about 1 lakh crore rupees this year itself. He said a mass rapid transport pilot project is underway in Nagpur at a cost of 170 crore rupees. The project involves a 135-seater bus that will run on non-polluting energy sources and is expected to be highly cost effective. And now let's take the first call of the show that is coming in from Delhi. Our listener Yogesh is with us. Yogesh, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Thank you so much. जी मेरा सवाल ये है कि मेरे पास में म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो है, तो ज्यादातर पोर्टफोलियो मेरा जो भी एसेट्स में है मैं उसको कंसोलिडेट करके म्यूचुअल फंड में ला रहा हूँ। तो जो मैंने खाका तैयार किया है वो कुछ इस प्रकार से है कि मेरे पास में टोटल मिला करके 7 म्यूचुअल फंड है। तो कृपा करके मुझे बताएं कि क्या ये बहुत ज्यादा है। मैं आपको नाम बताता हूँ कौन कौन से हैं मेरे पास में। इमरजेंसी फंड के लिए एक ICICI का लिक्विड फंड है, दूसरा फिक्स इनकम एलोकेशन के लिए ICICI का शॉर्ट टर्म डेट फंड है, तीसरा मेरे पास में 4 SIP वाले फंड हैं, जिसमें सबसे पहला है ICICI लार्ज मिड कैप पराग पारेख ELSS फंड, एक्सिस स्मॉल कैप एंड SBI स्मॉल कैप, तो छह ये हो गए। और एक सातवां फंड मैं चाहूंगा कि आप रेकमेंड करें जो मेरा सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट होगा, कोई अगर आप सेक्टोरल या थीमेटिक फंड देखते हैं अगले 2 या 3 साल के लिए।
सातवां फंड
योगेश जी, पहले मैं कहूंगा कि आपने जो फंड्स चुने हैं अच्छे हैं, और देखिए जो आपने बताया कि 6-7 फंड्स, इनमें से आपके 2 फंड तो आपके सीधा ही देखिए एक फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन का पार्ट है जो कि एक लिक्विड है और जो कि एक डेट है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। और बाकी के फंड्स में भी आपका जो पहले 2 है वो अपने एक प्रॉपर थोड़ा डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में है, एक फ्लेक्सी कैप है और एक लार्ज एंड मिड कैप है, और बाकी का आपने थोड़ा सा स्मॉल कैप एक्सपोजर के लिए किया, तो एज सच आपके पोर्टफोलियो में कोई खराबी नहीं है, आप इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके आगे में भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फंड्स को आप ऐड करने की ना सोचें, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि एक और अगर मैं इसमें कोई सा फंड ऐड करना चाहूँ, तो देखिए मैं कहूँगा उसके बजाय जो आपका ये जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो आपका फ्लेक्सी कैप फंड है, आप उसी में अपने पैसे बढ़ाइए। अगर आपका जो लॉन्ग टर्म होराइजन है 5 साल से ज़्यादा का, उसी में बढ़ाइए, और अगर भी ज़्यादा होराइजन वाला है उसमें से आप थोड़ा सा एलोकेशन अपना आप स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं।
जी, अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से सुभाष। सुभाष, स्वागत है आपका, सवाल।
हाँ, नमस्कार सर।
नमस्कार
सर, मेरा ना SIP चल रहा है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप में, और मेरा ही एसेट लार्ज कैप में और एक पराग पारस में फ्लेक्सी कैप में, तो मुझे क्या इसमें सर कंटिन्यू करना चाहिए? अभी जो मार्केट जो वॉलेटाइल चल रही है, तो मैं तो एक सीनियर सिटीजन हूँ सर, तो 10,000 का फ्लेक्सी चल रहा है SIP करीब, लेकिन फ्रैंकली इंडिया में कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा सर, एक साल से चल रहा है उसमें, वो तो 10 रुपए के नीचे भी नीचे से चल रहा है।
सुभाष जी, अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे है, मैं समझ सकता हूँ कि बीइंग अ सीनियर सिटीजन जब ये मार्केट वोलेटाइल होता है तो सबसे ज़्यादा एक थोड़ा सा हमारे को लगता है, क्योंकि जो हमारे इक्विटी का पोर्टफोलियो है काफ़ी नीचे चले जाते हैं। इसमें मैं इसलिए सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा कि आप इंश्योर करिए कि जो भी आप पैसा अपना इक्विटी में लगा रहे हैं, ये आपका जो एक देखिए रिटायरी के लिए एक नॉर्मली जो हम लोग पोर्टफोलियो सजेस्ट करते हैं वो ये होता है कि अराउंड 1/3 ऑफ द पोर्टफोलियो आपका इक्विटी में होना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ प्रोवाइड करे, और बाकी का जो आपका 2/3 पोर्शन है वो आपका फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप इंश्योर करें कि आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप ये कैसे असेट एलोकेशन कोई सा फॉलो कर रहे हैं जो भी आपकी इनकम विड्रॉल की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी आप अपना पैसा इक्विटी फंड्स में डाल रहे हैं वो आप इंश्योर कर लीजिए कि ये आपका जो आप, क्योंकि आप कह रहे हैं अभी भी आप उसमें SIP कर रहे हैं, मतलब कि आप अभी भी उसमें एक अक्यूमुलेशन फेज में या आगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो ये वाला जो पैसा है ये आपको 5 साल से पहले नहीं चाहिए, ये आपका मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है या आप ग्रोथ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए आप एक ये लंबे समय के लिए ही इसमें डाल रहे हो, तो सबसे पहले तो आप ये इंश्योर कर लीजिए। बाकी फंड्स आपके ठीक है, इनमें कुछ बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसे कोई खराबी नहीं दिखती, अभी आप कंटिन्यू करिए इसमें इन्वेस्ट करना, बस एक असेट एलोकेशन का अपना ध्यान रखिए।
जी, एंड द नेक्स्ट कॉल इज फ्रॉम जयपुर, जितेंद्र इज कॉलिंग अस फ्रॉम देयर। जितेंद्र, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
सर, जैसे मेरा 2 प्रश्न है, एक तो जैसे 5-10% अमाउंट में क्या नाम है डिफेंस सेक्टर के उसमें डालना चाहता हूँ, सिर्फ 10%, और दूसरा की जो KYC है सर, जैसे आदित्य बिरला में भी है, महिंद्रा मनु लाइफ में, कोटक में, तीनों में हमारा है, तो कैंप्स में दे दे तो तीनों एक जैसा एक ही जैसा KYC रहेगा या किसी एक में देने से चल जाएगा? अगर हम कोटक में दे दें तो क्या तीनों में अपडेट हो जाएगा?
KYC आपका ये सेंट्रलाइज्ड होता है, इसमें जैसे अगर आप कुछ भी मॉडिफिकेशंस कराएंगे आप कैंप्स के थ्रू जाके कराएंगे RTA के थ्रू, तो ये आपका अक्रॉस जो भी आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उसमें हो जाएगा, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स या अगर और कोई डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएंगी। बाकी उससे पहले आपने बोला कि आप डिफेंस सेक्टर में 10% अपना पोर्टफोलियो का शायद इन्वेस्ट करना चाहते, देखिए आप ज़रूर कीजिए, बस मैं एक आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हम लोग एक जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, अभी हम लोग बात करते हैं कि जैसे मार्केट नीचे गिरा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो भी आपके सेक्टोरल फंड्स होते हैं वहाँ पे संभावना रहती है कि वो ज़्यादा गिरे, और वहाँ पे एक शार्प अप्स एंड डाउन्स रहते हैं हमारे, तो एक आप अगर आपको बहुत ज्यादा या कहें आप छोटा सा ही पोर्शन डाले, आपने खुद ही कहा आप 10%, तो 5 या 10% जो भी आपको लगता है एक आपका जो एक सैटेलाइट पोर्शन हो सकता है पोर्टफोलियो का, जो आपका कोर पोर्शन नहीं है, आप उससे ज्यादा ना लगाइएगा और लमसम ना लगाए, आप सिस्टमैटिकली ही उसमें इन्वेस्ट करें।
दिल्ली से यशपाल हमारे साथ है, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
गुड इवनिंग एवरीवन, माय क्वेश्चन इज फॉर माय सन एंड डॉटर इन लॉ। सन इज 32 ईयर ओल्ड एंड ही प्रेजेंटली हिज पोर्टफोलियो इंक्लूड्स स्मॉल कैप टाटा एंड निपोन, प्राग पारिक फ्लेक्सी एंड ईएलएसएस, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग, निपोन ग्रोथ फंड एंड टाटा लार्ज एंड मिड कैप। And my daughter-in-law is yet to enter into mutual market. So my question is, in the present scenario, so could you please suggest some schemes? They want to invest through lump sum and SIP both in some schemes. So kindly advise some suitable schemes in the present scenario for both. Thank you.
यशपाल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि इवन इफ दे हैव अ लमसम रेडी, डू नॉट इन्वेस्ट अ लमसम इन द इक्विटी मार्केट, बिकॉज यू डोंट नो वेदर द इक्विटी मार्केट्स विल फॉल फर्दर फ्रॉम हियर और नॉट। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू यू नो स्टैगर योर इन्वेस्टमेंट इन केस यू नो दे आर फियरिंग कंज्यूमिंग दैट अमाउंट एल्सवेयर। वॉट यू कैन डू इज यू कैन गो थ्रू अ सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, बाय द लिक्विड फंड, park the money over there, and then set up a SIP in the target equity fund. The main benefit is that you'll be average the cost of purchase. Let's say the market is at a certain level here, you invest the whole amount thinking that it won't fall further, but in the coming few weeks it falls further, there's a drastic fall. So there will be two impact. Firstly, your son would become anxious. He would say that maybe he'll start questioning his decision of investing the amount in that particular fund. Secondly, what will happen is that they'll lose the chance of averaging the cost of purchase and buying more at a lower price. So firstly, I would say that don't invest a lump sum, and secondly, I would suggest going more for the diversified funds. To invest this amount as far as your investment horizon is more than 5 years, just go for a diversified equity fund, because they anyways have exposure to all the sectors, the main ones, the manufacturing companies, as you said that they have also invested in one of the manufacturing funds. So by virtue of investing in just one fund, a diversified kind of a flexicap fund, like Parag Parikh flexicap fund or the Franklin India flexicap fund, what happens is that you automatically get exposure to all the main sectors.
Right. Let's take the next call. Vijay is calling us from Maharashtra. Vijay, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Hello.
Ji, Market Mantra, sawal puchhe aap apna.
Everybody, good evening to Market Mantra's team. Mera question do hai. PPF ka wo message deke khali exchange karo. Lekin maine check bhar diya April ka. Aadhar card, PAN card laga hai, tabhi bhi unhone hold nahi nikala. मैसेज भी नहीं आ रहा। बाद में मैं 4 तारीख को गया, उनको बोला, मेरे सेविंग बैंक वालों को भी बोला कि मैसेज नहीं आ रहा। 2-5 हजार ठीक है, 1.5 लाख का रहने पर भी मैसेज नहीं। वो बोले इधर तो केवाईसी वगैरह ठीक है। फिर
विजय जी, आज का कार्यक्रम हमारा म्यूचुअल फंड्स पर आधारित है, और ये जो आपका सवाल था, आप सोमवार को या शनिवार को पूछे तो हमारे एक्सपर्ट्स उस दिन जवाब दे पाएंगे। आज अगर म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। चले अगले कॉलर के पास, हम कोल्हापुर से रत्नाकर हमारे साथ है। रत्नाकर जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हेलो। गुड इवनिंग सर, मेरे दो सवाल है कि मैंने ग्रैंड सन के लिए आदित्य बिरला बाल भविष्य करके एक फंड आउट में निवेश किया था
जी,
वो अभी 50,000 में किया था, अभी 81,000 तक आ गया, तो वो निकालना चाहिए क्या? ये सवाल है। तो दूसरा सवाल है कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो 3 साल में भी नहीं बढ़ा है, बहुत कम बढ़ा है, 10% बढ़ा है, तो ऐसे हालत में वो म्यूचुअल फंड से वापसी करना है, वो रिडम्पशन करना उचित रहेगा क्या? थैंक यू।
आकार, ये बहुत बुनियादी सवाल है जो कई निवेशकों के मन में आता है कि अभी पैसे बढ़ गए हैं तो निकाल लूं क्या, या अभी नहीं बढ़ रहे हैं तो निकाल लूं क्या। म्यूचुअल फंड में पैसे कब निकालने चाहिए, सवाल असली ये है।
देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो मैं चीज कहूंगा कि आपको ये देखना होगा कि अगर आप पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो आप क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, गिनती की कुछ ऐसी चीजें होती है जब आपका उस म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना ठीक है। सबसे पहला, अगर आपको पैसे की जरूरत है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ इमरजेंसी है, आप अपने किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे और आपने वो गोल अचीव कर लिया, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, आप निकालिए। सेकेंड है कि अगर वो फंड काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि जब मार्केट गिरा तो वो भी वो फंड गिरा तो आपको लगे कि वो अंडर परफॉर्मेंस है, या सिर्फ एक दो साल का अंडर परफॉर्मेंस। जो उस कैटेगरी के बाकी के फंड्स है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको देखना है कि वो डिफरेंट फेजेस ऑफ द मार्केट में कैसा कर रहा है। देखिए, जो पहला वाला सवाल था कि अभी उसमें पैसे बढ़ गए हैं क्या मैं निकाल लूं, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप निकाल लेंगे तो उसका भी आप करेंगे क्या। अगर आपको और कहीं नहीं उसको यूज करना है तो आपको दो चीज़ें होंगी, या तो होएगा कि वो आप कहीं पे कंज्यूम कर लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो बिना बात को आपकी इन्वेस्टमेंट खर्च हो जाएगी, और मान लीजिए कुछ समय के बाद मार्केट और ऊपर जाएगा तो आपको इस बात का दुख होएगा कि यार अगर मैं वो इन्वेस्टेड रहता तो वो शायद 80,000 से बढ़कर के 1,00,000 हो जाता। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए बेटर है कि आप एक असेट एलोकेशन प्लान फॉलो कीजिए जिसमें कि थोड़ा पोर्शन आपका फिक्स इनकम में हो, थोड़ा आपका इक्विटी में हो, और वो ऐसे सिचुएशंस में आपको सिस्टमैटिक मैनर में प्रॉफिट बुकिंग भी करा देगा, और आपको जब इक्विटीज नीचे होंगे तब एडिशनल इन्वेस्ट भी करा देगा। और बाकी जो दो तीन सिचुएशंस है जब आपका फंड बेचना जस्टिफाइड है, वो है कि पहले जब आपको वाकई में उस पैसे की ज़रूरत हो, दूसरा अगर ऐसा कुछ आपको असेट एलोकेशन के लिए रीबैलेंसिंग करनी हो, या फिर तीसरा वो फंड काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अंडर परफॉर्मेंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे होनी चाहिए अपने कैटेगरी के दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में।
Let's take the next call. Mr. Bhairav is calling us from Haldia.
Hello.
Hello, ji Bhairav, आपका मार्केट मंत्र में स्वागत है, अपना सवाल पूछे।
Hello.
Hello, Bhairav.
हाँ, नमस्कार मैडम।
नमस्कार, अपना सवाल पूछे आप।
हाँ, हेलो
जी, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछे।
जी सर, मेरा जो है 5 तारीख को SIP की डेट थी कैनरा रिवेको इमर्जिंग इक्विटीज में, और उस दिन शनिवार था, मेरा बैंक से पैसा कट गया और मुझे यूनिट जो है 7 तारीख को मार्केट क्रैश हुआ था, उस दिन की न मिलके 8 तारीख की मिली है। जो कैनरा रिवेको कंपनी से मेरे पास मैसेज आया उसमें लिखा कि यूर SIP प्रोसेस्ड ऑन 7th और NAV दे दी सर 8 तारीख की, 6 रुपये का अंतर आ गया, 6 रुपये बढ़ गया। क्या म्यूचुअल फंड कंपनियां ऐसी गड़बड़ी कर सकती हैं कि जिस दिन मार्केट गिर रहा उस दिन की यूनिट न दे के अगले दिन की दे सकती हैं?
नहीं, देखिए जो लॉ है उसके हिसाब से जो एक कट ऑफ टाइम होता है उसके बाद आपका जब AMC को पैसा रियलाइज होता है उस दिन की NAV देनी चाहिए। तो अगर आपके बैंक से पैसा शनिवार को कट गया था तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि मैं मानता हूँ कि सोमवार को उनको ऑलरेडी पैसा मिल गया होगा, तो उस लॉ के हिसाब से उस दिन का NAV होना चाहिए। बाकी आप एक दफ़ा उनके कस्टमर केयर पर बात करिए और उनको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाइए कि शनिवार को निकल गया था, तो उसके हिसाब से आप बात कर सकते हैं।
जी, दिल्ली से है अगले कॉलर पंकज। पंकज, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
गुड इवनिंग सर, मार्केट मंत्रा के पूरे टीम को नमस्कार।
नमस्कार
सर, ये अभी सरकार ने एक जन निवेश SIP करके शुरू किया है, तो इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल बताइए कि ये पैसा कहाँ पे जाएगा और ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि फर्स्ट टाइम यूजर हैं, या फिर इसके विषय में क्या डिटेल है, इसमें करना चाहिए नहीं, क्या इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है? थैंक यू।
ये जो जन निवेश है ये बेसिकली है जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, आपके पैन के बेसिस पे, आपके KYC के बेसिस पे पता लग जाएगा कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, और उनके लिए एक बहुत ही छोटे से अमाउंट से 250 रुपये के से फैसिलिटी दी जा रही है कि वो SIP शुरू कर सकते हैं। सो आज की तारीख में देखिए SIP वैसे भी नॉर्मली 500 रुपये से भी हो जाती है, कुछ कुछ फंड्स में आपको 100 रुपये से भी मिल जाती है। तो अब यहाँ पे जैसे कुछ लोग अपना लोगों की सहूलियत के लिए सरकार ने निकाले कि अब वो 250 रुपये से भी कर सकते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, उनके KYC और पैन के बेसिस पे, बट बाकी चीज़ें यहाँ पे सेम रहेगी, वही फंड्स रहेंगे और सब चीज़ें रहेंगी। तो मेरा ये मानना है कि आपको बिल्कुल निवेश करना चाहिए, आप जो भी एक अमाउंट है अपना अच्छे से सोचिए और एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड पकड़िए और वही पैसे इन्वेस्ट करें जो आपके 5 साल से ज्यादा के लिए हो।
जी, अगले कॉलर है इंदौर से अनिल। अनिल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
सर, हमारा सवाल ये है कि कौन सा जो सीनियर सिटीजन को और लेडीज को गंभीर रूप से उनको विशेष रियायत देता है, क्योंकि हर तरह से देता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा अभी तक किसी ने शुरू नहीं किया, अभी ऐसा है।
अनिल जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, कॉल में कुछ डिस्टरबेंस है, आप किसी बेहतर जगह से कॉल कर सकते हैं, शायद लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है।
जी, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज। After ending moderately lower in a volatile last week, the domestic market is expected to maintain caution due to subdued start of the earnings season, with lower than expected numbers of TCS and the ongoing global trade war. The participants will focus on quarterly earnings, inflation, China's GDP numbers and ECB interest rate decision scheduled next week. Next week, the corporate earnings season will gradually be in full swing as top IT companies, banks and insurance companies will release their March quarter numbers. Globally, investors will keep an eye on the US tariff developments. The market participants will also focus on the speech by Fed Chair Jerome Powell, scheduled on April 16th. Further, the focus will be on the ECB meet outcome and the first quarter GDP numbers from China, along with March inflation data by Eurozone, scheduled next week. Back home, the market participants will keep an eye on inflation numbers for March due April 15th.
आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं कि सोने का क्या हाल रहा बीते हफ्ते में। व्यापार युद्ध के बढ़ते हुए तनाव और उसके साथ ही कमजोर होते अमेरिकी डॉलर के असर से बीते हफ्ते में दुनिया के बाजारों में सोने की कीमतें एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। इस हफ्ते यानी बीते हुए हफ्ते में स्पॉट गोल्ड 6.4% बढ़कर $3,245 प्रति औंस पर पहुंच गया। बीते हफ्ते में अमेरिकी डॉलर पर बिकवाली का जबरदस्त दबाव रहा। यूएस डॉलर इंडेक्स में दो साल में पहली बार 100 के नीचे आ गया। शुक्रवार को यह 0.72% नीचे 99.89 पर बंद हुआ। पिछले 3 दिनों में सोने चांदी की कीमतों में लगभग 8% की बढ़त देखी गई। आयात शुल्क पर अमेरिका के प्रेसिडेंट के अनिश्चित रवैये की वजह से अमेरिकी शेयर बाजार बॉन्ड्स और डॉलर में तेज बिकवाली रही। इस साल अब तक सोने की कीमतों में 20% से ज्यादा की बढ़त देखी गई है। समझा जाता है कि इसके पीछे केंद्रीय बैंकों की मांग, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें और दुनिया में राजनीतिक अस्थिरता का हाथ है। और चले अगले कॉलर के पास, गाजियाबाद से गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
नमस्ते मार्केट मंत्री।
नमस्कार
सर, ये मेरा सवाल है कि 843 रूल ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? इसका मुझे ये समझ में आया कि 15 साल बाद स्नोबॉल या बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता है इंटरेस्ट रिटर्न। और दूसरा सवाल था सर, 50-30-20 भी कोई रूल होता है जिसमें 20% हम कब से हम सेविंग करिए, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। पर्सनल फाइनेंस का क्वेश्चन है। थैंक यू।
गौरव जी, जो 843 है ये बेसिकली एक कंपाउंडिंग का रूल है, जो नॉर्मली कहता है कि आपने जो पैसा पहले 8 साल में इकट्ठा किया वो आपका अगले 4 साल में डबल हो जाएगा और उसके बाद अगले 3 साल में दोबारा वो उतना ही अमाउंट आपको डबल कर देगा। सो ये एक कंपाउंडिंग के ऊपर रूल है कि बट इसमें सर्टेनली आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी अजम्पशंस होती है। सेकेंडली, जो आप बता रहे 50-30-20 पर्सनल फाइनेंस का, वो एक थंब रूल है बजटिंग के लिए, जो कि कहते हैं कि जो आपका इनकम का 50% है वो आपका जो भी नीड्स है, जो एसेंशियल नीड्स है, जैसे कि आपकी ग्रोसरीज हो गई, ईएमआईज हो गई, उन सब की तरफ जाना चाहिए। और जो आपका 30% है, नेक्स्ट 30% वो आपके लिए जो एंटरटेनमेंट है उसकी तरफ आपको खर्च करना चाहिए, और जो बचा हुआ 20% है वो आपको अपना सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में लगाना चाहिए। बट मैं ये कहूँगा कि देखिए, ये बहुत ही ब्रॉड थंब रूल्स होते हैं, एक ये कंपाउंडिंग का भी और ये भी, बाकी डिपेंड करता है हर किसी की सिचुएशन पे, सर्कमस्टांसेस पे और हर किसी के अपने ऊपर। बहुत हो सकता है कि किसी की नीड्स, एक्चुअल नीड्स इतनी ज़्यादा हो कि उसको कुछ 50% से ज़्यादा अपने इनकम का पोर्शन लगाना पड़े, और वो उतना ज्यादा ना सेव कर पाए या उतना ज्यादा एंटरटेनमेंट पे ना लगा पाए. तो उन चीजों को देखते मैं कहूंगा कि बेस्ट जज रहेंगे कि आप अपनी पर्सनल सिचुएशन को देखिए और 20% इज द मिनिमम दैट आई वुड सजेस्ट कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर आपके सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन आपको ज्यादा अलाउ करती है तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा अलाउ हमको इन्वेस्ट करना चाहिए.
The next call is coming in from Gurugram. Nitin is calling us from there. Nitin, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
हाँ जी नमस्कार जी.
नमस्कार, अपना सवाल पूछिए.
गोल्ड की जो रेट है एकदम इतने हाई हो जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं, ये घटने का नाम क्यों नहीं लेते, ऐसा क्यों होता है, ये इसके पीछे कौन सा देश है जिसमें वो रेट डिसाइड करता है. और दूसरा ये पूछेंगे कि अगर गोल्ड के अंदर कोई इसके अंदर कोई टैक्स नहीं होता.
नितिन जी देखिए, गोल्ड जो एक है, आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा आसमान छू रहा है. और देखिए गोल्ड की ना क्वालिटी होती है, ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत अच्छा है. और जब भी अनसर्टेनिटी या फियर होता है ना, तो इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है. क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं ना कि स्टोर ऑफ वैल्यू में हिस्टोरिकली बहुत अच्छे से प्रूव किया, हमारे ट्रेडिशनली कल्चर में भी, हिस्टोरिकली भी. अभी देखिए पिछले कुछ टाइम में दोनों तीनों चीज़ें हुई. रशिया वाला जो हमारा केस है, यूक्रेन के टाइम पे सेंट्रल बैंक्स ने बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, उसको परचेज करना शुरू कर दिया, उसके वजह से भी डिमांड बढ़ी, उसके वजह से भी प्राइस ऊपर गया. तो गोल्ड ऐसे सिचुएशंस में हमेशा ऊपर जाता है. और सेकेंडली अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, सॉरी आपका सवाल था टैक्सेशन का, इस पर बिल्कुल टैक्स लगता है, इस पर आपका कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा. जब भी आप बेचेंगे तो उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स.
जल्दी से एक आखिरी कॉल लेते हैं. नोएडा से सुरेश हमारे साथ हैं. सुरेश जी स्वागत है, आपका सवाल पूछे.
सर नमस्कार.
नमस्कार
सर, मेरा प्रश्न है कि ये मेरा प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड मैच्योर हो रहा है, मैच्योर हो गया 31 मार्च को. तो मुझे दो ऑप्शन हैं, या तो मैं इसी को एक्सटेंड करूं या इससे पैसा निकाल के मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाऊं जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है. तो आपकी क्या सलाह होगी कि यहां से पैसा निकाल के सीनियर सिटीजन में लगाना चाहिए या इसी को कंटिन्यू करें. थैंक यू.
सुरेश जी देखिए, इसमें मैं दो चीज़ें आपको कहना चाहूँगा कि देखिए जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन वो टैक्सेबल होएगा. तो थोड़ा सा यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, कि आपकी कितनी टैक्सेबल इनकम है. क्योंकि अगर आप 30% टैक्स स्लैब में, तो 8.2 पे 30% लगा के आपका जो नेट रिटर्न है वो अराउंड 5-6% के बीच में पहुंच जाएगा. वहीं जो PPF पे इंटरेस्ट है वो 7.1% टैक्स फ्री रहेगा आपका. और साथ ही में यहाँ पे एक चीज़ ये भी डिपेंड करती है कि क्या आपको इस इनकम से बीच बीच में पे आउट्स चाहिए. अगर चाहिए तो PPF से आपको ऐसे नहीं मिल पाएंगे, वो आपको खुद बीच में विड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये दोनों तीनों चीज़ें आप वे करिए कि क्या टैक्स स्लैब में आप बैठते हैं और क्या आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप दोनों में अपना चुनाव कर सकते हैं.
And we don't have time to take up any more calls. For our listeners who were waiting to get in touch with us, to call us, to get their mutual fund related queries answered, I would advise them, I would ask them to get back to us next Sunday. And before we wind up the program, one last story also. Global crude oil prices declined for the second consecutive week in a volatile week marked by tariff news that sent prices to four-year lows before the US paused some tariffs for 90 days. Brent crude oil prices slipped 3.2% during the week to end at $64.76 a barrel on Friday, whereas US crude fell 3% during the week to close at $61.5 a barrel.
आकार मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. Government to invest 10 lakh crore rupees in highway development projects over next 2 years, says Union Minister Nitin Gadkari. Domestic markets to focus on tariff announcements and quarterly earnings for Qs next week. And global gold prices surged over 6% last week to another record high at $3,245 an ounce. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
मार्केट मंत्रा।